بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بيتك محمد وآل محمد. خداوند متعال نے ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی سعادت نصیب کی. ان کے غم میں غمگین ہونا ہمارے دلوں کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جذبات کے ساتھ متصل ہونا، یہ صرف ایک ظاہری کام نہیں ہے. جیسا کہ کل ہم نے روایت عرض کی تھی، مولا امیر المومنین سے درود بھیجے گا محمد والا. ہمیں دنیا میں ہم لوگ کسی کو پسند کریں یا کسی کو چاہتے ہوں، بعض وقت یہ لگتا ہے جیسے ہماری مرضی ہے، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے. کہ کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، نہیں اچھا لگتا نہیں. مولا نے فرمایا کہ جو تم کسی کو پسند کرتے ہو یا کسی کو چاہتے ہو، یہ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوگا. جسے تم یہاں پسند کرو گے اور چاہو گے، برزخ میں تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی. میں جو انسان کسی پتھر کو بھی پسند کرے گا تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اب اگر تمہاری پسند ہمارے لیے ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، اس کا مطلب تو ہمارے ساتھ محشور ہوگا. اور یہ جملہ ایک طرف سے تو ہمیں ایک امید دلاتا اور انسان کی ایک آرزو کو پورا ہوتا دکھا دیتا، لیکن ایک اعتبار سے یہ جملہ اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کو بتا رہا ہوتا ہے. میں اس طرف بھی کچھ منٹ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم انسان معمولاً ایسے نہیں ہوتے کہ اپنی زندگی کو کسی ایک کونے کے اوپر لگا دیں اور اسی کے اوپر ساری جد و جہد کریں. ہم لوگ تقسیم ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. صبح سے دوپہر تک ایک کردار، دوپہر سے شام تک ایک کردار، شام سے رسوتے تک ایک اور کردار. اس میں ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں. یہ تو انسان کی طبیعت کا حصہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر وہ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، اس کی محبتیں تقسیم ہوں گی. اورینٹیشن کیا ہوگی؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اورینٹیشن بھی صبح سے شام تک تقسیم ہوتی رہے گی، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو کسی ایک اورینٹیشن کے اوپر چلنا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر وہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی جاب کے اندر ہوتا ہے یا بزنسز کے اندر ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا، رولز مختلف ہو سکتے ہیں، اورینٹیشن ایک ہو. وہ اورینٹیشن کیا ہے انسان کے اندر؟ وہ اورینٹیشن اہل بیت ہیں یا وہ اورینٹیشن اپنی من پسندی ہے؟ یہاں پر آ کر یہ جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس میں پھر چار چیزیں نہیں ہو سکتی. यहाँ पे कोई एक चीज है जो रूल कर रही होती। और कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश की कि बाद औकात कोई शख्स उस ऊपर के चार रोल्स को देखते हुए इस गलत फहमी में रह जाता है कि उसका जो बुनियाद में रोल है वो भी सही है, और बहुत किसी क्रिटिकल टाइम पे जाकर उसको पता चलता है कि नहीं, वो फाउंडेशन में कुछ और चीज़ें भी मौजूद थी। दूसरी मिसालें आपके सामने हैं, जो मशहूर तरीन मारूफ तरीन मिसाल हम और आप दिया करते हैं इस मसले को समझने के लिए, वो कूफा की मिसाल है कि भाई सामने सामने तो सबके सब आशिक थे, सामने सामने तो वो ऐसे ऐसे खतूत भेज रहे थे जो क्या कोई इनकलाबी माशरा अपने रहनुमा को भेजेगा। लेकिन जब टाइम आया इस बात को जानने का कि भाई अब ये साथ देंगे या नहीं देंगे, तो पता चला नहीं, फाउंडेशंस में उस दावे और उस मोहब्बत के अलावा और भी बहुत कुछ था, और बदकिस्मती से वो जो था, और ये भी मुझे अंदाजा है कि कोई इंसान वलीउल्लाह होगा कि उसकी फाउंडेशन में सिवाय हुब्बे अहले बैत, सिवाय हुब्बे नबी औलाद नबी के कुछ ना हो, वलीउल्लाह होगा। तो कुछ ना कुछ इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ मिलावटें उसमें होंगी, ये भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि इनमें से कौन सी चीज रूल करेगी उसके इरादे पर, मुश्किल यहाँ है। और वो किस तरह पता चलता है, वो क्या आम जिंदगी में समझ में आ जाता है? नहीं, वो आते ही उस वक्त में जब जान जोखों पर होती है, जब जान के ऊपर बनी भी होती है, वरना उससे पहले तो दावा है, उससे पहले तो नारा है, नारे लगाने में क्या जा रहा है, वो भी बाद औकात मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन असल मामला ये है कि भाई जब वो क्रिटिकल स्टेज आएगा तो पता चलेगा कि अंदर क्या है। और जो तीसरी दफा तीनों दिन मैंने जुमला अर्ज किया है, वो इज़ा मुहसु बिल बला, सईद शुहदा का जुमला, उनकी जात पे दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले ज्यादा। हमारे पास पता नहीं कितनी रिवायतें ऐसी हैं कि मसलन किसी कहने वाले ने कहा कि मौला हम आपके, मसलन एक दावा किया कि हम ये हैं, इमाम ने फरमाया नहीं वो नहीं, तुम कुछ और। तो मसलन नहजो बलागा में भी मौजूद है कि हजरत कंबर ने कहा कि मौला आपके कुछ शिया आपसे मिलना चाहते हैं, फरमाया कहाँ है? अब ये जुमला बता रहे कि इमाम को बताया कि कहाँ है, पूछा कौन है, कहाँ है, कहा ये, कहा ये, तो शक्लों से भी नहीं लग रहा है कि मेरे शिया, शक्लों से भी नहीं लग रहा है। मैंने उर्दू में बिल्कुल इस तरह करके कहा, फरमा जी शिया होते तो ये ऐसे होते हैं, ये शिया नहीं है मसलन। तो अब ये नहीं है कि शिया नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नहीं शिया नहीं है, मुहिब है, चाहने वाला है। हम लोगों ने अपने लिए बड़ा टाइटल इंतखाब कर लिया है, या दुनिया ने शायद खुशफहमी में रहकर हमें बड़ा टाइटल दे दिया। शिया बहुत बड़ा नाम है, हम मुहिब हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस पे भी फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हिदायत के लिए, ये भी हमारी फलाह सलाह के लिए और हमारी रस्तगारी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि ये मुहिब बाज़ वक़्त साथ देते हैं, बाज़ वक़्त साथ नहीं देते। ये मुहिब जब उस इम्तिहान में फंसते हैं, इनमें से कुछ होते हैं जो मुहिब भी होते हैं और शिया भी होते हैं, वो साथ दे देते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो कुछ होते। और अगर वो कुछ ना होते 250 साल में ज्यादा होते, तो फिर आपको खुद पता है, फिर क्या जेल जाने की क्या जरूरत थी, फिर शहादतों की क्या जरूरत थी, यानी होना ही नहीं था फिर तो इस तरह, फिर गैबत क्यों हुई असलन, मुहिब कम है इस वक्त। तो इन तमाम बातों को कहने का मतलब ना नाउमीदी का एहसास दिलाना है, वरना मैं खुद कहाँ जाऊंगा, मैं भी वही हूं जो आप मैं हम साथ ही करें। तो अब ये है कि अब काम क्या है, काम ये है कि आपको और मुझे चेक करना होगा कि भाई वो जो हमारी फाउंडेशंस हैं, और फाउंडेशन से मेरा मतलब हमारी वो आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं जिसने फैसला करने में हमें मदद देनी है, एक्चुअली उसने फैसला करना। और ये भी आपकी खिदमत में तेजी सर्च करता चलूँ कि ये जो डिसीजन मेकिंग बाज़ोकात होती है, ये इतनी माइक्रो सेकेंड में हो रही होती है और इतनी अनआइडेंटिफाइड प्रोसेस के जरिए हो रही होती है कि ऑलमोस्ट लगता है जैसे ऑटोमेटिकली हो गई है, जैसे ऑटो के ऊपर इंसान चलते हुए काम कर गुजरता है, फिर अचानक बाद में सोचता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक मिसाल हमारी और आपकी जिंदगी में शायद कभी आई हो, वो ख्वाब की मिसाल होती है। مثلاً فرض فرمائیے آپ نے خواب میں اپنے آپ کو کسی ایک حالت میں دیکھا, اس موقع پر خواب میں کوئی ریاکشن دے دیا. اچھا, جاگنے کے بعد انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں نے خواب میں بھی یہ کیوں کیا تھا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے اس بات کی کہ دیکھو اگر وہ خواب سچا ہوا کہ اندر کچھ اور بسا ہوا ہے, ہوشیار ہو جاؤ. یہ جب باہر نکلے گا تو وہ نہیں نکلے گا جو تم سمجھ رہے ہو, یہ کچھ اور بھی ہے اندر اگر خواب سچا ہو. باقی تو اب انسان پتہ نہیں کتنے خواب دیکھتا رہتا ہے. تو ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اس بات کی اس فاؤنڈیشن کو صحیح کیا جائے اور آئیڈینٹیفائی ہونا سب سے بڑی بات. شاید میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, ہم لوگوں کی شخصیتیں تہوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں. کئی لیئرز ہیں جن کے نیچے ہماری اصلی شخصیت دبی ہوئی ہوتی ہے. بہت کم کوئی انسان ہوتا ہے جس کے پاس اتنی زیادہ ڈیپتھ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کرے دے کہ اس اصلی شخصیت کو ایکسپلور کرنے میں اور اس کو پھر کریکشن دینے میں کامیاب ہو جائے. معمولاً ایسا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی مصیبت ہمارا خود پسندی کا شیل ہے, ہمارا خود پسندی کا ایک شیل ہے. یہ جو شیل ہے یہ کریک نہیں ہوتا اتنی آسانی سے, کیونکہ جب بھی ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں وہ ہماری خود پسندی اوپر آ کر ہمارے لیے عذر بناتی ہے. یہ جو میں نے کیا نا, یہ میں غلط نہیں تھا, اس وجہ سے ہوا. تو یہ جو خود پسندی کا شیل ہے یہ ہمیں اپنے آپ کو اندر اندر محفوظ رکھتا ہے کہ ہم کو اس کے اوپر الزام نہ دے دیں کہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ جو خود پسندی کا شیل ہے یہ ہمیشہ اچھے پرل بچا کے نہیں رکھتا ہے, یہ بعض اوقات گاربیج بچا کے رکھ لیتا ہے. اور پھر جب وہ مشکل آتی ہے اور وہ جو اسپونٹینیسلی آپ کو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے, اب وہ آرٹیفیشل بیہیویئر نہیں دکھا سکتے. وہ جو جملہ مولانا نجیب البلاغہ میں بھی شاید فرمایا, جب مصائب مشکلات میں لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے جوہر کھلتے ہیں. جوہر کا مطلب صرف اچھی اسکلز نہیں ہے, یعنی اصل حقیقت وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا. تو بار بار میں آ رہا ہوں اس بات, اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. یہ سب باتیں ہو گئی, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. صحیح کیسے کرنا ہے؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی اللہ علیہ. ہمارا ریالٹی کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے, ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ریالٹی ایز اٹ از میرے پاس آ گئی ہے. ما عرفتنا من الحق فحملنا, خدایا حق میں سے جتنا سمجھنے کی ہمیں طاقت مل گئی ہے, ہم تو نے ہمیں سمجھا دیا, ہمیں اٹھانے کی طاقت دے دے. تو ہم سب کو بتائے کہ 100% ریالٹی ہمارے پاس نہیں آئی ہوگی, ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسیز رہی ہوں گی. یہ جو پرسیپشن آف ریالٹی ہے, جتنا پرسنٹ بھی صحیح تھا جتنا پرسنٹ بھی غلط تھا, یہ ہمارے اندر اسٹور ہوا ہوا ہے. اور یہ کریٹیکل ٹائم کے اوپر یہ جو پرسیپشن آف ریالٹی ہے, چاہے میں الفاظ سے کچھ بھی بولتا رہوں, یہ فیصلے کروائے گا. وہ کیسے؟ اب مثال کے طور پر مجھے لفظ میں پتا ہے ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے. اچھا, الفاظ میں کس کو ترجیح ہے؟ آخرت. یہ ایک الفاظ کا گیم ہو گیا. اندر کیا ہے؟ اندر پرائیورٹی کس کی ہے؟ آپ کہیں گے اندر وہی ہوگا جو باہر کا ہے, ہمیشہ ایسی ہوتا ہے؟ نہیں. حتیٰ انبیاء خدا سے ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ خدایا اندر کو کسی طرح صحیح کروا دے. ربی کیف تخلق, اے خدا تو کیسے خلق کرتا ہے؟ اولم تومن, کیا تم ایمان نہیں لائے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی, ہاں ایمان تو لایا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میرا قلب مطمئن ہو جائے. یہ قلب وہ گہرائی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی خدا فرمانے, ایمان تو لایا ہوں نبی ہوں لیکن میں چاہتا ہوں قلب تک وہ یقین گہرائی کے ساتھ اتر جائے اور یہ بتا دے تو ہی خلق کرتا ہے اور کوئی نہیں ہے, اور یہ پروسیجر مجھے سمجھ میں آ جائے. اب خدا نے یہ نہیں کہا دیکھو میں تمہیں خالقیت کی ایک دلیل بتاتا ہوں, یہ بھی نہیں کہا زمین و آسمان کو دیکھو میں ان کو خلق کرتا ہوں. چند آیت پہلے میں خدا نے مطالعہ نہیں کیا ہوا, چند آیت پہلے میں کہا کہ ایک نبی گزر رہے تھے, انہوں نے کہا خدا تو ان سب کو کیسے خلق کرے گا, ایک آبادی سے گزرے جو مری ہوئی تھی, اس کو کیسے خلق کرے گا. وہیں ان کو مار دیا, 100 سال بعد زندہ کیا, قرآن کریم ہے روایت نہیں, قرآن کریم 100 سال بعد زندہ کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اب تم دیکھو ہم کیسے خلق کرتے ہیں. تو ان کو یہ دکھایا کہ دیکھو تمہارا ایک گدھا تھا, اس کے اوپر ہم نے اب ہڈیاں چڑھانی ہیں دوبارہ سے, اس کے چورے کو جمع کر کے دوبارہ ہڈیاں بنیں گی, دوبارہ کھال چڑھے گی, دوبارہ گوشت آئے گا, اور تم ایک اور عجیب چیز دیکھو گے وہ تمہیں کہ تم جب مرے تھے 100 سال پہلے تو ایک کھانا تمہارے پاس تھا, وہ نہیں سڑا ابھی تک, وہ نہیں سڑا. تو ہم جس کو چاہیں گے بچائیں گے, جس کو چاہیں گے ماریں گے, جس کو چاہیں گے ماریں گے, جس کو جب چاہیں گے زندہ کریں گے. اس میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں کیا فرق ہے؟ اس میں جس نبی نے کہا تھا, جن نبی نے کہا تھا کہ یہ کیسے زندہ کرے گا, ان کو خدا نے خالقیت کے چینل میں نہیں ڈالا, آبزرور بنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا, اب سوال آبزرویشن کا نہیں تھا, انہوں نے کہا میں نے آبزرو کر لیا, کہاں سے؟ خدا نے متعال فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ملکوت دکھائی تھی. تو یہ جو نبی تھے ان کو تو صرف گوشت پوست چڑھتا دکھایا تھا, حضرت ابراہیم کو اس سے پہلے زمین و آسمان کی ملکوت دکھا دی تھی. اب وہ سوال دیکھنے دکھانے کا نہیں کر سکتے تھے. اب انہوں نے یہ کہا کہ خدا دیکھ لیا میں نے جو دیکھنا تھا, اب یہ بتائیے ہوتا کیسے ہے؟ تو اب سوال دیکھنے کا نہیں ہے, اب خدا نے کہا میں تم کو خالقیت کے چینل میں ڈالتا ہوں تاکہ تم یہ دیکھو کہ یہ خلق کیسے ہوتا ہے, تم کرو گے. تو اب تم پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو, اور جب تم ان کو بلاؤ گے تو یہ ٹکڑے جڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے, تو تمہیں پتا چلے گا کہ خلق کیسے ہوتا ہے. یہ ہو گئے چینل, خالقیت کے چینل کے اندر. اچھا, کسی شرک کے بادشاہ نے اس کو شرک کہا تو اس کو شرک کیوں نہیں کہا؟ یہ چھوٹی سی ایک بات تھی, شرک بہانا تھا, کچھ اور تھا معاملہ, ورنہ یہ شرک کیوں نہیں کہا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالق بن گئے یہاں پر, یہ کیوں نہیں شرک ہوا پھر؟ یہ شرک نہیں ہوتا ایسے جب تک فاعلیت میں خدا کے سائے میں چل رہا ہے. حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے, کہتے تھے اور کہا کہ میں خلق کروں گا پرندے کو, لیکن بِإِذْنِ اللہ ختم ہو گیا معاملہ, کوئی شرک نہیں ہوا. تو وہ شرک کا مسئلہ نہیں آتا. جو ہماری بات تھی وہ کہاں پہ تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے اندر کسی وجود کی گہرائی کو جا کر چیک کرنا پڑے گا, اس گہرائی کے اندر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا بنی ہوئی ہیں, وہ کیا بنی ہوئی ہیں. تو جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ مولانا نے فرمایا دیکھو باتیں تو تم سب آخرت کی کرتے رہو گے, صحیح ہے, یہ بتاؤ تمہارے لیے آخرت ہے بھی یا نہیں ہے, اس کو ڈھونڈو. اگر اس سے کم کوئی بات ہوئی یہ دنیا حکومت پر آتی رہے گی ہمارے اوپر, اور جب ہم کسی کریٹیکل ٹائم میں پڑیں گے دنیا ہمارے اوپر حکومت کر دے گی. اور یہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک اور مولا کا فرمان یاد آتا ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے فرمایا جو انسان ہے, اجمالاً مفہوماً نقل کر رہا ہوں, مولا چوتھی سرکار سے بھی منسوب ہے, فرمایا جو انسان ہے یہ 2 گروہ میں, کچھ آخرت کے فرزند ہیں کچھ دنیا کے فرزند ہیں. اب یہ جو ہم فرما رہے ہیں کچھ آخرت کے بچے ہیں کچھ آخرت کے بیٹے ہیں, ابناء الآخرہ, یہ وہ نہیں جو زبان سے آخرت کہتے ہیں, ان کے دلوں میں آخرت بسی ہوئی ہے, یہ اتنی بسی ہوئی ہے جیسے آخرت ان کی ماں ہے, یہ آخرت کے بیٹے ہیں. اور کچھ ہیں وہ ابناء الدنیا ہیں, وہ دنیا کے بیٹے ہیں, وہ دنیا کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کوئی اپنی ماں کو چاہتا ہے, اور دنیا سے ایسے اٹیچ ہوئے میں جیسے کوئی اپنی ماں سے اٹیچ ہو جاتا ہے. تو امام فرمانے تم ہوشیار رہنا, ابنائے دنیا نہیں بننا, ابنائے آخرت بننا. اب یہ ابنائے آخرت کے لفظ سے بننا ہے کیا؟ یہ الفاظ کا گیم نہیں ہے یہاں پہ, یہ حقائق کا گیم ہے. اب یہاں حقیقتوں میں اترنا پڑتا ہے. इस खातिर वो हमसे कहते हैं इतनी मानवी तरबियत करो कि मरने से पहले आखरत को देख लो, ताकि तुम्हारे सीनों के अंदर, कुलूब के अंदर दुनिया ना हो, आखरत हो। ये देखे बगैर नहीं होने वाला है। ये उनको नसीब हो रहा है जो इस दुनिया में मरने से पहले आखरत देख लेते हैं। क्यों खुदा हमसे बार बार कहता है कब्रिस्तानों में जाओ, मुर्दों को दफनाओ, तशी जनाजे का इतना सबाब क्यों कहता है? क्यों बार बार हमसे कहता है शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है? क्या क्या जरूरत है? जरूरत इस बात की, वरना तुम दुनिया की औलाद बन जाओगे, आखरत को देखो, आखरत की औलाद बनो। और ये सिर्फ मैंने बता दिया आपकी खिदमत में, एक ही रास्ता है जो मुझे समझ में आता है। ये फलसफे से नहीं होने वाला, ये दलील मंतक से भी नहीं होने वाला। दलील मंतक सिर्फ क्या करेगी, सिर्फ दरवाजा खोल सकती है बस। एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतनी मानवीय तरबियत करनी पड़ेगी कि इंसान मरने से पहले मौत को और आखरत को जानता हो। ये जो कमाल हासिल कर पाते हैं वो फिर अपने सीनों से दुनिया को निकाल पाते हैं। उससे कम पे नहीं होता, उससे कम पे हम लव्स के खेल में पड़े रहते हैं और हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो कभी इधर लुढ़कती हैं। दो दिन आखरत के लिए होते हैं, चार दिन दुनिया के लिए होते हैं, सुबह से एक डेढ़ घंटा जो है वो आखरत के लिए होते हैं, फिर आठ दस घंटे दुनिया के लिए होते हैं। और आप ये मत समझिएगा मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जॉब नहीं करनी है, बिजनेस नहीं करना है, गाड़ी नहीं खरीदनी, करनी सब खरीदना है। क्या वो जो अहले आखरत थे उन्होंने कुछ नहीं खरीदा था? क्या खुद मौला अमीर मोमिनीन की जमीनें नहीं थी? क्या उनको आबाद नहीं करते थे, उस पर मेहनत नहीं करते थे, नखलिस्तान नहीं उगाते थे, सब करते थे? फर्जंद आखरत का होना, फर्जंद आखरत का होना। अगर मुझे और आपको सीरत अहले बैत अथहार से जो सबसे अहम पॉइंट सीखना है, उसके बाद सारे काम आसान है। वरना हर चीज में हमारा जो सो कॉल्ड क्रिटिकल दिमाग है ना, वो एक बड़ा ही अजीब है, वो अब अहले बैत को भी नहीं छोड़ता है। ये पता नहीं हम लोगों ने क्या सीख लिया है, मुझे वाकई समझ में नहीं आता भाई। लॉजिकल दिमाग तो समझ में आती थी, क्रिटिकल होना रात का हिस्सा बनाओ, ये कहां से हो गया? अब बोलो मैं लॉजिकल हूं, ये दैट मेक सेंस। लेकिन आपने और मैंने ये सीखा है कि उठा के फेंक दो, ऐसे बनो, ये कहां से सही हो गया? लॉजिकल बनो, जो सही है उसे कबूल करो, जो सही नहीं है उसे कबूल मत करो। अब आप कहेंगे लॉजिकल और क्रिटिकल में फर्क क्या है, वो छोड़ देते हैं, अब मैं इतना कहना था कह चुका। अब आते हैं थोड़ा सा इस और मामले के ऊपर, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें कि अब नए आखरत बन जाए, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले सूरह हशर, जिसकी हम तशरीह अर्ज करेंगे कल इंशाअल्लाह। तो उसमें अंसार का बिहेवियर बताया कुरान करीम ने, ये क्या करते हैं, यो सरून आला अनफुसहिम वलो काना बिहिम खसासा, ये अपने नफ्स के ऊपर इसार कर लेते हैं, महाजिर जो आए थे उनको दे देते हैं, जबकि खुद इनको जरूरत थी, खुद इनको जरूरत थी। ये इसार क्यों किया? दुनिया में तो ये इसार काबिल फहम नहीं, आपने क्यों इसार किया? अच्छा, अब यहाँ पे फौरन मेरे जहन में आएगा, मैंने भी तो $5 दिए थे, अपने बच्चे खुशे में से दिए थे या इशार में से दिया था? बच्चे खुशे का भी, जिसका ये बताओ कि इसको देने से मेरी कोई लग्जरी भी कम नहीं होगी, उसमें से दिया था। अगर ये भी मुझे पता होता ना कि इससे मेरी कोई लग्जरी भी अंडर क्वेश्चन आने वाली है, तब भी नहीं देता। ये वो बहुत दूर की बातें हो गई। तो जब कोई इंसान इस काम को प्रैक्टिस में क्या करे, इसको प्रैक्टिस में करो, कुछ कुर्बानियां देके देखो, देखो दिल पे क्या गुजरी है, और उसमें से दो। फरमाता खुदा ने लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। न्यूट्रल कोई चीज थी वो अल्लाह की राह में दे दी, ये इम्तिहान है? नहीं, खुदा नुजा फरमाते उसमें से दो जिसमें तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ था, हुब, जिसमें तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ था उसमें से दो, फिर तुमको पता चलेगा, फिर तुमको बताना, फिर तुम बताना कि तुम चाहने वाले किसके हो, दुनिया के हो या आखिरत के हो। तो ये जो मैं और आप समझ रहे हैं ना कि जो खम्स हम देंगे, ज़कात हम देंगे, ये हमें मोमिनों की फहरिस्त में ले आएगा। ये बेयर मिनिमम था जिस पे अब हमें क्वेश्चन है कि मैं अपना माल क्यों दूं। ये वो बेयर मिनिमम था कि इतना तो दे दो वरना जानना में जा रहे हो, उस पे मुझे क्वेश्चन है कि मैं क्यों दूं। सही, वो तो बात कुछ और है फिर आगे वाली। वो एक बंदा खुदा था, उसको मैं पाकिस्तान में मिला तो कहना, उसको उसको पता था कि वो एक खम्स ज़कात पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वरना वो कुरान करीम कहता है हमने तुमसे पैसा नहीं मांगा, वरना मांगते तो तुम बहुत बखल करते हैं। बखल करते कुरान में, कुरान करीम। अल्लाह इंशाअल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें मौला अमीरुल मोमिनीन और उनकी औलाद की खिदमत करने की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अच्छा, अब हम लोग मामूलन अपने, चूंकि उज़्र बनाना तो इंसान की आदत है, कुरान करीम फरमाता है इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलव अल्का मआज़ीरा, इंसान अपने नफ्स के ऊपर बसीरत रखता है लेकिन उज़्र बनाता रहता है, बनाता रहता है। तो कुरान करीम ने फरमाया तो अब मैं उज़्र बनाऊंगा। वो ये कि मौलाना एक मौका आएगा, मतलब मैं आपसे कहूँगा आप परवाह नहीं करें, मैं बहुत साहिब ईमान हूँ, जिस दिन मौका आएगा ना फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना साहिब ईमान। हाँ सही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मौलाना अभी तो मैं 3 किलोमीटर नहीं भाग रहा लेकिन मैराथन वाले दिन 40 किलोमीटर भागूंगा। जो आज 3 किलोमीटर नहीं भाग पा रहा वो कल 40 किलोमीटर कहाँ से भाग लेगा, मैं कहाँ से भाग सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ शुरू से करता रहना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर क्या करें भाई, किस दुश्मन का गिरेबान पे हाथ डालें? न डालो दुश्मन को, किसी दुश्मन अपने नफ्स के गिरेबान पे हाथ डालो। ये बताओ अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकाल पाते हो? कुरान के लिए टाइम निकाल पा रहे हो? नहजुल बलागा के लिए टाइम निकाल पा रहे हो? अभी तो जान और पैसे की बात ही नहीं है, टाइम की बात है। ये नहीं निकाल पा रहे तुम जान कहां से दोगे? वो एक आदमी आया मौला के पास और कहने लगा कि दरन मौला छठे इमाम के पास दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद कहने लगा इतने लाख आपके मानने वाले कुफा में, मौला आप मदीना में होते थे मौला, कहा आप बनी अब्बास और बनी उमैया की जंग चल रही थी, बनी उमैया की तरफ हुकूमत जा रही थी, तो वो आए कहता है कि मौला इतने आपके मानने वाले, आप बैत के लिए हाथ उठाते, इतने लोग लाखों आपके मानने वाले थे। इमाम ने सुना, कई रिवायतें हमारे पास हैं इस टाइप की। फिर एक मौके पे इमाम ने इरशाद फरमाया ये लोग जो तुम कह रहे हो कि सब हमारे शिया हैं, इनमें से किसी को कोई मुसीबत आए तो वो दूसरे की जेब में से पैसा ले सकता है क्या? नहीं मौला ऐसा तो नहीं होता, जेबें सबकी अलग होती हैं। इमाम ने फरमाया कि जब ये अपनी जेबों को कुर्बान नहीं कर पा रहे तो खून कहाँ देंगे फिर, जान कहाँ देंगे? तुम कह रहे हो अपना माल नहीं दे पा रहे एक दूसरे को। हम लोगों के दिमाग में कैपिटलिज्म ने प्राइवेट ओनरशिप का ऐसा भूत डाला है, हम खुदा के सामने अकड़े हुए हैं कि मेरा है, दूसरा भाई तो छोड़ ही दो, वो तो जाने ही दो, हम तो खुदा के सामने अकड़े हुए हैं ये मेरा है मैं क्यों दूं। इसके साथ मैं दावा कर रहा हूं कि मौला खुदा मुझे आखिरी हुज्जत के अवान अंसार में करार दे। वो क्या हो शेर नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो मसला क्या है, मसला ये है ये हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुब्बे अहले बैत के साथ, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, ऐसा कोई ना समझे कि मैं ये जुमले कह रहा हूँ तो मसलन मैं इस मोहब्बत का नाउज़ बिल्लाह इनकार करना चाहता हूँ, ये कह रहा हूँ इस मोहब्बत की कोई कीमत नहीं। नहीं, पहले दफ़ा जो शुरू में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, मैंने कहा इस मोहब्बत की कीमत है, ये हमें मैदान हश्र में अहले बैत तक ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक और मामला है, वो ये है कि मामला अब ये सिर्फ नहीं है कि मैदान हाशर में मुझे शफात मिलेगी या नहीं मिलेगी, मसला ये है कि भाई ये गैबत कब तक चलनी है, आखिर इसका क्या होगा, और इस गैबत को ख़त्म करने वाले भी लोग आएंगे या नहीं आएंगे? आने यकीनन आने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो कौन है? अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई ये मेरे बस का नहीं है, किसी और को दे दो। इस चक्कर में 1100 साल होगा कि मेरे बस का नहीं है, किसी और को दे दो। लो 1100 साल होगा। अब सवाल ये है कि कुछ लोग कभी जागेंगे या नहीं जागेंगे, ऐसे ही चलना है इसमें, जाग जाएंगे फिर भी एक मुश्किल होगी, हम पता नहीं कहां होंगे। सिर्फ खतरा ये है, और खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह इन्हीं गफलतों में अगर वो तो जाग गए और उन्होंने अपना काम कर दिया, फिर हमारा क्या होगा। मुश्किल यहां है। तो इस खातिर अर्ज कर रहे हैं कि भाई आपको और मुझे एक तैयारी में जाना है, अब इस स्टेज के बाद एक स्टेज है, उस स्टेज में क्या है, हमें अहले दुनिया से निकलकर अहले आखरत बनना। ये जो अहले आखरत बनने का अमल है, ये इस तरह होता है कि थोड़ी बहुत कुर्बानी दी जाए, थोड़ा बहुत अपने आप को प्रेशराइज किया जाए। वो कैसे, मिसाल के तौर पर आप कुछ इबादतें कर रहे थे, थोड़ा सा उसको चैलेंज में डालें अपने आप को, थोड़ा कुछ सख्ती में डालें, देखें क्या होता है। इसी तरीके से इंसान अपने ऊपर थोड़ा सा थियोरेटिकल काम भी कर ले, मिसाल के तौर पर वो आखरत जो अभी उसका कॉन्सेप्ट मुझे इतना अपील नहीं कर रहा, मसलन तो सोचो भाई क्या कमी है जो अपील नहीं कर रहा, मसलन क्यों मेरे अंदर वो तड़प नहीं आ पा रही। देखें एक सादा सी बात है, अभी मिसाल के तौर पर मैं व्हाट्सएप पे चेक करने बैठूं, 1.5-2 घंटा गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं है, सही है। और हम सब यहां बैठे हुए, मुझे कोई एक किताब दे दे दीन की कि ये पढ़ लो, यानी ये समझ लें कि मेरा हर सेकंड इतना कीमती हो जाएगा कि मुझे लगेगा बस अगर मैं ये किताब पढ़ता रहा तो मेरी तो दुनिया गई, खत्म हो गया मामला, इतना भारी पड़ेगा मुझे। क्यों भारी पड़ रहा, ये क्यों भारी पड़ रहा। तो यहां पे एक थियोरेटिकल इशू भी है, एक प्रैक्टिकल इशू भी है, और इन इन बातों पर जवाब लेके चलें तो हमारे साथ एक मुश्किल है, हम सबको मालूम है वो, कि हमारा दिल कितनी ही जगहों के ऊपर इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है, वहां से नहीं निकल पा रहा। जो एंड में हमारे साथ मुश्किल आ सकती है, चले अभी मैं ये भी कह दूं, खुदा ना करना नऊज़ु बिल्लाह नहीं कहना चाहता कि मसलन फर्ज करें भी ज़ुहूर और गैबत के मसले को थोड़ा सा मैं रोक लूं, नऊज़ु बिल्लाह ताला, कि मरना या नहीं मरना, मरना तो है ना, चलो फर्ज करो कोई खुदा ना करे नऊज़ु बिल्लाह कहे कि भाई ज़ुहूर गैबत का हमें नहीं मालूम कब ज़ुहूर होगा, आज ही होगा इंशाल्लाह, हमसे तो ये कहा है कि हमेशा यही बोलो आज ही होगा। लेकिन अगर कोई कहे भाई मरना तो है ना, तो जब मरना है तो ये क्या है, मरने का अमल ये है कि मेरी और आपकी रूह को, चूंकि बदन में तो यही रह जाना, मेरी और आपकी रूह ने इस दुनिया से निकल कर एक और दुनिया में दाखिल होना है, उसका नाम है आखरत, ठीक है। अगर खुदा ना करे मेरी रूह की अटैचमेंट्स इसी दुनिया के अंदर हैं, ये आखिरत में पहुंचना बहुत सख्त हो जाएगा। और अब कोई बोले नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे मलिकुल मौत तो ले जाएगा। सिर्फ क्या होगा, वो एक बच्चे को देखा कभी, उस बच्चे को कोई माँ बच्चे को आप लेके जा रहे होते हैं, वो जमीन पे पटख रहा होता है, जूते रगड़ रहा होता है, उसको हाथ से पकड़ के कभी खंधे से पकड़ के घसीट के लेके जा रहे होते हैं, ये बताओ कैसे जाना है, सुकून से जाना है घसीट के लेके जाना है। वो एक बंदा था आयतुल्ला मिर्जा जवाद मलिकी तबलीजी, आयतुल्ला खुनैनी के उस्ताद थे इल्मे इरफान में, आयतुल्ला मिर्जा जवाद मलिकी तबलीजी खुद शागिर्द थे आयतुल्ला सैयद अली काजी तबतबाई के। तो आयतुल्ला मिर्जा जवाद मलिकी तबलीजी कौम में हुआ करते थे, वो शागिर्द तरबियत करते थे। तो उनका एक शागिर्द एक दफा उनके पास सुबह ही सुबह फजर के वक्त के बाद पहुंच गया और उसने कहा कि उस्ताद मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैंने कुछ देख लिया कल रात और मेरी तो जिसे कहते हैं रूह निकल रही है। उन्होंने कहा क्या देखा, उसने कहा कि मैंने देखा कि मैं रात को सो रहा था अपने कमरे में अपने घर में, तो अचानक मुझे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा चीख रहा है चिल्ला रहा कोई, बहुत तड़प तड़प के, बहुत ही ज़्यादा वहशतनाक। तो मैंने कहा मैं अपने कमरे से निकला, अब जो कमरे से निकला मेरा घर नहीं था, कोई और था, वो कोई घर नहीं कोई और ही जगह थी, और मैं अपने अब मैंने आके देखा कि मैं कहाँ आ गया, तो अपने घर में सोया था। फिर वहां जो आया तो वहां पे मुझे नजर आया कि वो जो आवाज आ रही है वो सामने एक दरवाजा है वहां से आ रही है। कहने का मैं वहां पे गया देखने के लिए कि भाई ये कौन बेचारा फंस गया, कौन किसको मार रहा है कि इतना ज्यादा चिल्ला रहा है ये। तो कहने का मैंने वहां पे जाके देखा तो वहां पे एक दरवाजे में से वो अंदर झांक के देखा तो देखा कि एक आदमी जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके सीने के ऊपर एक पत्थर है जो खुद छत तक गया हुआ है, तो गया पूरी एक रॉक है जो उसके सीने के ऊपर रखी हुई है, और वो जनाब उस रॉक की वजह से कुचल रहा है पूरी तरीके से, और वो चिल्ला रहा है, पांव मार रहा है, और कहने के मैंने उसके सर के ऊपर देखा तो वहां पे दो आदमी खड़े हैं, दोनों के हाथ में गोया आयरन रॉड है, सुर्ख हुए हुए, गर्म हुए हुए, और वो उसको मार रहे हैं। तो एक तो वो पत्थर से कुचल रहा है, दूसरा वो रॉड उसको मार रहे हैं। कहने के टॉर्चर ऐसा कि बस कोई देखे और मर जाए। तो कहने मैं चिल्ला रहा हूं कि भाई छोड़ दो इसकी जान, न वो सुन रहा है जो नीचे, न वो सुन रहा है जो मार रहे हैं। कहने चिल्लाते चिल्लाते मैं खुद खौफजदा होकर गोया मरने लगा, तो मैं वापस कमरे में आ गया और जिक्र करने लगा खुदा के, खुदा है मुझे निजात दे, काम हूं, किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई, फिर जो उठा तो अजान से थोड़ी देर पहले का वक्त था। डरते डरते घर से बाहर निकला, कमरे से बाहर, कि अब पता नहीं अपने घर में हूं, कहां खुला हूं, देखा नहीं अपना घर, अपना घर था। मैं जाके वजू वजू किया, नमाज नमाज पढ़ी, मेरी तो हालत बहुत खराब है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ साहब ये क्या वाला देखी मैंने, कहने लगे कि तुमने इस बंदे का एहतजार देखा है, ये बंदा मर रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, कहने हाँ ये सूदखोर है, मरते वक्त इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कहा मैं इस बंदे को पहचानता हूं, कहा पूछो। तो कहने लगे मैंने फौरन तहरान टेलीग्राम किया कि वो बंदे क्या हुआ, तो एग्जैक्टली उसी टाइम में मौत आई थी उसे। तो ये एहतजार इतनी आसानी से नहीं आने वाली है, ये अटैचमेंट्स एक मुसीबत करके देंगे, और इसकी तैयारी के लिए बार बार कहते हैं देखो मौत के वक्त से डरो। और ये जो हमें बार बार रिवायतें कहती हैं, दसियों रिवायतें हमारे पास हैं, मौत को याद करो, मौत को याद करो। क्यों कह रहे हैं मौत को याद करो, क्योंकि मौत ये ऐसा नहीं है दो मिनट में होने वाला है। ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, पहले भी अर्ज कर चुका हूं कई दफा, ये दो मिनट की कहानी नहीं है, ये हम और आपके लिए दो या तीन मिनट होता है। या मिसाल के तौर पर मसलन दुनियावी एतबार से कुछ 10-15 मिनट पहले कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये हमें लगता है कि चलो ठीक है, तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट की कहानी है, बिलाखिर गुजर ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं है। आप जाके मेडिकल साइंसेज में देख लीजिए, इस वक्त तो अंडरस्टूड हो गया, पिछले साल का एक बहुत गैर मामूली तजर्बा हुआ जिसमें एक आदमी मर रहा था और वो किसी स्कैनर के अंदर था, तो उसकी सारी ब्रेन एक्टिविटी मौत के वक्त की रिकॉर्ड हुई भी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट उस सेक्शन में जिसका ताल्लुक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी से है। मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान जिसको हम 10 मिनट समझ रहे हैं, ये पूरा लाइफ टाइम देखता है वहां पर, पूरा लाइफ टाइम है। यानी मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, आप इसी तरह से कि मसलन कि डाइंग पर्सन अंडर स्कैनर और फना फना आपको सब मिल जाएगा। तो उसमें वो जो जो उसने स्पैन गुजारा है टाइम का, वो तकरीबन लाइफ टाइम है, और उसमें सारी मेमोरी उसकी रिव्यू हुई है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब रिव्यू हुआ है। अब यानी हो क्या रहा है, यानी हो ये रहा है कि मरने से पहले इसको एक एक अमल दिखाया जा रहा है, तुमने दुनिया में ये किया है, सिर्फ एक फर्क के साथ, यहाँ अच्छा किया था तो पता नहीं था कि इस अच्छे के पीछे क्या मिलने वाला है, उस वक्त नजर आ जाएगा। तो कुछ लोग मरते हुए मुस्कुराते हुए मरते हैं, और कुछ लोग गिड़गिड़ाते हुए मरते हैं। वो पता होता है कि जो हमने ड्रामा किया था, और अभी माजद के साथ ये अभी सिर्फ ट्रेलर है। एहतजार जुर्म की सजा नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस खातिर हमारे पास है कि बरजख या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है, या जन्नत के बागों में से एक बाग है। हत्ता बरजख अभी तो एंट्री थी, एहतजार सिर्फ एंट्री है, सिर्फ एंट्री। इसलिए मौला फरमा रहे आह मिन कल्लत ज़ात बतूल सफर नहजुब अलगम, कि फरमाया आह अफसोस कि रास्ता बहुत लंबा है और ज़ादे राह बहुत कम उठा है। सही। तो ये बात की गैबत है, और जहूर आपने करना, जहूर के लिए आपको कुछ करना चाहिए, आपको असबाब जहूर में बनना है ना असबाब गैबत में। चलो फर्ज करो थोड़ी देर के लिए, नाऊज़ बिल्लाह ताला, सद नाऊज़ बिल्लाह ताला, मैं इसको उठा के रख देता हूँ, मरना मराना नहीं है क्या, मरना है तो मरने में तो ये है। अब कोई बोले नहीं ये नहीं होने वाला, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इस्लाम से भी जा रहे हैं फिर, एंड यही है नाऊज़ बिल्लाह ताला। तो ये बड़ा अच्छा वक्त होता है, इंसान थोड़ा गौर करे। अपनी लाइफ के ऊपर, ये जो फन है, ये जो जैसे कहते हैं वो चमकती हुई चीजें, ग्लिटरिंग है, फना फना, ये सब तो चलता रहेगा, ये तो हमेशा चलता रहा है। लेकिन क्या मसलन किताब कुरान हमेशा के लिए नहीं है? क्या कलाम अहले बैत हमेशा के लिए नहीं है? क्या इससे बड़ी रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी कहीं और है क्या? उस पर देख लो, उस पर अपने आप को नाप लो, वरना ये कहानी क्या रह जाएगी? वरना कहानी ये रह जाएगी किसी का पीआर है, किसी का वीजा है, किसी का घर है, किसी की गाड़ी है, किसी का बैंक बैलेंस है, और कुछ नहीं है। और अजीब बात यह है कि जिनको हमसे कहा कि तुम इनको लान करो, اللهم لعن فنا 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 زيارت عاشورا میں ہم سب کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ان کو جو لان کروانا تھا کیوں کروانا تھا؟ یہ جب جس عذاب میں ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم میں نے لان کیا ان کو، اس سے کہیں زیادہ عذاب میں ان کو یہ سمجھ میں بھی آئے کہ یہ لان کون کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو ان لوگوں کو، تو یہ لان ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ ये हमसे इसलिए करवा रहे हैं कि ये जो मलून लोग थे इनके अंदर कुछ क्वालिटीज थी जिसकी वजह से ये मलून हुए थे, तुम में ना आ जाएं कहीं। ये सब दुनिया परस्त थे, इसलिए ये लोग शिमर और उमर के साथ बने थे, तुम में ना आ जाए कहीं। इसलिए इनको लान करो, इनकी सिफतों से लान करते हुए अपने अंदर वो सिफतें बनाओ जो औलिया सैयदुश्शुहदा में है, वो लेकर आओ। ये लान इसलिए है। अब बदकिस्मती ये हो रही है कि हम उनको लान कर रहे हैं, बदकिस्मती से सिफतों के मामले के अंदर किसी और रंग में डंगते चले जा रहे हैं। मुश्किल यहां हो गई। तो अच्छा मौका है इंसान अपने आप को सोचे, मैं मौला का चाहने वाला हूँ, मैं मौला का मानने वाला हूँ, मौला की शहादत के अय्याम है, और कौन लोग थे जो इमाम को शहीद करने की दर पे थे? कौन लोग थे? इनमें क्या सिफतें थी? इनके हदफ क्या थे? ऐसा ना हो मेरी जिंदगी का हदफ वही बन जाए। इससे बचते हुए तो इंशाअल्लाह लुत्फ खुदा शामिल हाल हो आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह हबलुल्लाहिल मतीन को अपने हाथों में देख रहे हैं, अल्लाह की मजबूत रस्सी लन फिसाम लहा अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम, तो वो हमारे हाथ में है, हमें उसको थाम कर तमस्सुक करके अपने आप को इस मुसीबत से निकालना है जिसमें अहले दुनिया मुब्तला है, यहां से निकालना है। अल्लाह का करम है, खुदा का शुक्र है कि उसने हमें मोहब्बत से नवाजा हुआ है, हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है। आखिरी लम्हात हैं इस मजलिस के और आप रोजे के बिल्कुल आखिरी औकात में आने, बहुत अच्छा वक्त है, बस अपने मौला के उस गम को याद करें जिस तरह मौला दूसरों के लिए कर रहे थे, उसको सोचे, यतीमों की देखभाल, कुरान करीम, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, यतीमों के बारे में खुदा का ख्याल करना, खुदा की खातिर ख्याल करना। कुछ यतीम इमाम के पास एक दफ़ा लाए गए, देखा इमाम ने यतीमों को, बहुत अफसरदा थे, खिलाफत ज़ाहिरी का दौर था, बहुत अफसरदा बच्चे थे। तो इमाम ने उनको देखा तो उनके सामने गोया, माज़रत चाह रहा हूँ, इमाम ने गोया एक लतीफ़ा कहा ताकि वो बच्चे खुश हो जाए, बच्चे खुश नहीं हुए, बच्चों को समझ में ही नहीं आया। तो इमाम को और अंदर से तकलीफ हुई कि बच्चे खुश नहीं हो पा रहे। तो माजरत चाह रहा हूँ, उस वक्त अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी कहा था, मौला आपने ऐसा क्यों किया? इमाम ने हाथ आगे रखे और ऐसे आवाज़ निकाली जैसे कोई मसल बकरी की आवाज़ है, और वो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इतने बड़े हाकिम से मिलने गए, वो हमारे साथ ये कर। तो बच्चे एक दूसरे को देख कर हंसने लगे। इमाम ने एक और दफ़ा आवाज़ निकाली, एक और दफ़ा हंसे, तो गोया अब्दुल्ला बिन अब्बास से कोई साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने मौला से कहा, मौला आप आके जरा। इमाम ने कहा नहीं, इस वक्त इन बच्चों का दिल खुश ना खर्च करना अली के लिए सबसे अहम है, मुझे इन यतीमों का दिल खुश करना। इतना यतीमों का ख्याल था। गोया जब दो इमाम दफना कर अपने वालिद गिरामी को तशरीफ ला रहे थे तो एक बूढ़ा नजर आया, लोगों से कहने लगा किसी को कुछ पता है शहर में क्या कुछ हो गया? कहा नहीं, क्या हुआ? कहने लगा कोई मेरे पास आता था, अभी तक नहीं आया, कोई मेरा ख्याल करता था, मुझे निवाले मुंह में डाल डाल के देता था। कहा तुमने नहीं पूछा उसका नाम क्या? कहने लगा बहुत दफा पूछा, बताता नहीं था, कभी अपना नाम नहीं बताया। आज मौला की रुखसती हो गई, अब बच्चे समझ रहे हैं अब हम यतीम हुए हैं, जो घरों के अंदर धर्मांधा थे, अब उनको पता चला कि हम धर्मांधा रह गए। बस इंसान अपने दिल में एक ही बात सोचता है, वो यतीमों का इतना ख्याल करते थे और एक मौका पर उनके बेटे के यतीम बाजारों में थे। वो तो इतना ख्याल करते थे हर यतीम का, उसको एक एक को खुश करने की कोशिश करते थे, और एक मौका आया जब इमाम हुसैन की यतीमा मैदान कर्बला में थी और मौला अमीरुल मोमिनीन की तो वो शान थी कि देखते हुए हर इंसान को फरमाते थे इसका ख्याल करो, इसको देखते रहो। और एक मौका आया जब सैयदुश्शुहदा गोदाले कर्बला में थे, और कल मैंने मसाहिब में अर्ज किया कि सैयदुश्शुहदा एक जगह जमीन पर गिरे और उल्टे किसी और जगह पर शहादत कहीं और पर हुई, और ऐसा क्यों हुआ? तो ये इमाम थे कि जो अपने खेमों के दिफा के लिए कोनियों के बल खड़े होकर दिफा फरमा रहे थे।
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْ قَلَمٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خدا بندہ، ہمیں مولا امیر المومنین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، خدا انہی قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدا اس روزے کے لمحے میں مولا امیر المومنین کے غم میں مبتلا لوگوں کی درخواست ہے خداوندہ، مولا امیر المومنین کے مصائب کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور اسرام شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔